नमस्कार भारत, आज है 10 मई दिन बुधवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एफबीआई निदेशक जेम्स कोमी को किया बर्खास्त, कर्मचारियों के संबोधन के बीच उन्हें थमाई गई बर्खास्तगी की चिट्ठी।
एनी अटेम्प्ट टू स्टॉप और अंडरमाइन दिस एफबीआई इन्वेस्टिगेशन वुड रेज ग्रेव।
मून जे इन बने दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति, उत्तर कोरिया से संबंध सुधारने के हैं हिमायती। होगी खास रिपोर्ट भारत प्रशासित कश्मीर के उन कोचिंग सेंटर्स पर जो छात्रों को आईआईटी जैसी कठिन परीक्षाओं में कामयाब होने का हुनर सिखा रहे हैं।
हमने पाया कि यहाँ पर अवेयरनेस लेवल बिल्कुल ही कम है। बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं लेकिन वो एंड अप नहीं कर पा रहे हैं उन जगहों पर जहाँ वो एक्चुअली जाना डिजर्व करते हैं, तो इसको हमने एज ए प्रॉब्लम सेलेक्ट किया।
होंगी और भी खबरें लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय जांच एजेंसी एफबीआई के प्रमुख जेम्स कोमी को पद से हटा दिया है। व्हाइट हाउस से जारी एक बयान में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस की सिफारिश पर कोमी की छुट्टी कर दी गई है। जेम्स कोमी अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में कथित रूसी हस्तक्षेप और ट्रंप के चुनाव प्रचार के रूस के साथ संबंध की जांच की अगुवाई कर रहे थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनेट में डेमोक्रेट नेता चक शूमर ने जेम्स कोमी को हटाने की खबर को परेशान करने वाली खबर बताया।
We know the House is investigating Russian interference in our elections.
चक शूमर ने कहा कि हम जानते हैं कि हाउस चुनाव में रूसी हस्तक्षेप की जांच कर रहा है जिससे ट्रंप के चुनाव प्रचार को फायदा पहुंचाया गया था। सीनेट में भी जांच चल रही है। एफबीआई इस बात की जांच कर रही है कि क्या ट्रंप की चुनाव प्रचार टीम का रूस से संबंध था। ये गंभीर अपराध है। क्या ये राष्ट्रपति के घर के बहुत नजदीक पहुंच गए थे? ये एक परेशान करने वाला कदम है कि अटॉर्नी जनरल सेशंस, जिन्होंने खुद को रूस की इस जांच से बचाया था, उसी जांच की अगुवाई करने वाले एक शख्स को हटाने में वो शामिल हैं। ये थे चक शूमर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति मून जे इन ने अब पदभार संभालने जा रहे हैं। कल हुए राष्ट्रपति चुनाव में लिबरल डेमोक्रेटिक उम्मीदवार मून जे इन को 41% वोट मिले, जबकि अन्य उम्मीदवार होंग जून प्यो को 24% वोट मिले हैं। मानवाधिकार मामलों के वकील रहे मून जे इन उत्तर कोरिया से बातचीत के हिमायती रहे हैं और दक्षिण कोरिया में अमरीकी मिसाइल सिस्टम की तैनाती पर भी सवाल उठा चुके हैं। कुछ ही घंटों में वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। पूर्व राष्ट्रपति पार्क गुन-हे को भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद महाभियोग के जरिए हटा दिया गया था, जिसके बाद दक्षिण कोरिया में समय से पहले चुनाव कराए गए हैं। अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राष्ट्रपति का पदभार डोनाल्ड ट्रंप को सौंपने के बाद पहली बार सार्वजनिक मंच पर वो आए हैं और उन्होंने लोगों को चेतावनी दी कि अगर वो राजनीति से किनारा करते रहे तो उन्हें उसी तरह के नेता मिलेंगे। इटली में एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पहुंचे बराक ओबामा ने कहा,
मैं हमेशा कहता हूं कि आपको ऐसे ही नेता मिलेंगे। अगर आप वोट नहीं डालेंगे या आप राजनीति में दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे तो वैसी ही नीतियां बनेंगी जो आपके हितों की बात नहीं करती। ये थे बराक ओबामा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीका सीरिया में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से लड़ रहे विद्रोहियों के गठबंधन को हथियार देने वाला है। इस गठबंधन का नेतृत्व कुर्द संगठन YPG के हाथ में है। अमरीकी सेना मुख्यालय पेंटागन का कहना है कि जमीन पर सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस एक अकेला ऐसा संगठन है जो निकट भविष्य में IS के हाथ से राका शहर को छुड़वा सकता है। अमरीकी रक्षा मंत्री जेम्स मेटिस ने कहा कि उन्होंने तुर्की के रक्षा मंत्री से इस बारे में बात की है क्योंकि तुर्की YPG को एक चरमपंथी संगठन मानता है। पेरिस जलवायु संधि से अमेरिका के पीछे हटने पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी महीने के अंत में होने वाली G7 देशों की बैठक के बाद फैसला लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप इस समझौते के आलोचक रहे हैं। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और फ्रांस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन घटाने के लिए की गई पेरिस जलवायु संधि के बचाव की बात कही है। अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाले अमेरिका और चीन को जलवायु परिवर्तन की इस लड़ाई में सबसे आगे रहना चाहिए। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। जैसा आपने अभी अभी समाचारों में सुना, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय जांच एजेंसी FBI के निदेशक जेम्स कोमी को बर्खास्त कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यालय के मुताबिक जेम्स कोमी को अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस की सिफारिश पर पद से हटाया गया है। कोमी लॉस एंजल्स में FBI स्टाफ को संबोधित कर रहे थे, तभी उन्हें एक चिट्ठी देकर बताया गया कि उनकी नौकरी चली गई है। जेम्स कोमी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के चुनाव अभियान में रूस की कथित भूमिका की जाँच कर रहे थे। पूरे ब्यौरे के साथ स्टूडियो में मौजूद है मानसी दास जी।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय जांच एजेंसी FBI के निदेशक जेम्स कोमी को पद से हटा दिया है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि मामला डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन पर विदेश मंत्री के तौर पर अपने निजी सर्वर के जरिए अपने आधिकारिक मेल भेजने के मामले से जुड़ा है। जेम्स कोमी ने इस मामले की दोबारा जाँच शुरू की थी। ट्रंप ने एक पत्र में कोमी से कहा है कि वो असरदार तरीके से FBI का नेतृत्व नहीं कर रहे थे। व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति के इस कदम की पुष्टि की है। व्हाइट हाउस का कहना है कि जेम्स कोमी को अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस की सिफारिश के बाद पद से हटाया गया है। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं का आरोप है कि कोमी बीते साल हुए राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के चुनाव प्रचार में रूस के साथ कथित संबंध की जांच की अगुवाई कर रहे थे और इसी कारण उन्हें पद से हटाया गया है। अमरीकी सीनेट में डेमोक्रेट नेता डिक डर्बिन ने कहा कि अगर सरकार के किसी कदम से FBI की जांच रुकती है तो यह गंभीर मुद्दा होगा।
एनी अटेम्प्ट टू स्टॉप और अंडरमाइन दिस FBI इन्वेस्टिगेशन would raise grave constitutional issues.
FBI के निदेशक के रूप में जेम्स कोमी की सेवाएं खत्म करने के बाद ये सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या पिछले साल के राष्ट्रपति चुनाव अभियान में रूस के कथित हस्तक्षेप की जो FBI जांच चल रही है वो जारी रहेगी। FBI जांच को रोकने की कोशिशें गंभीर संवैधानिक मुद्दों को जन्म देंगी। हम जितनी जल्दी हो सके व्हाइट हाउस के स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहे हैं ताकि कि ये जांच जारी रहेगी या नहीं ये पता चले, और क्या इसे कोई और बेहतर नेतृत्व मिलेगा ताकि ये जांच सही अंजाम तक पहुंचे। ये थे डेमोक्रेट नेता डिक डर्बिन। पिछले हफ्ते जेम्स कोमी ने अमरीकी कांग्रेस को हिलेरी क्लिंटन के ईमेल्स के बारे में गलत जानकारी दी थी, लेकिन बाद में FBI ने कहा था कि हिलेरी के ईमेल्स की नई खेप में किसी तरह की आपराधिक बात का कोई सबूत नहीं मिला है। राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार के लिए हिलेरी ने जेम्स कोमी को जिम्मेदार ठहराया था।
मानसी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ब्यौरे के लिए। और अब सीधे चलते हैं वॉशिंगटन BBC संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय के पास। ब्रजेश, राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यालय ने कहा है कि जेम्स कोमी FBI को नेतृत्व देने में सक्षम नहीं थे। क्या उन्हें हटाए जाने की यही वजह है या कुछ और कारण है?
देखिए अमरीश, यही डोनाल्ड ट्रंप कुछ महीने पहले तक जेम्स कोमी की भरपूर तारीफ कर रहे थे। उनके अटॉर्नी जनरल भी कोमी की तारीफ कर रहे थे और वही अब उन्हें नाकाबिल करार दे रहे हैं, और वो भी इस वजह से कि उन्होंने हिलेरी क्लिंटन के ईमेल की जिस तरह से जांच की वो सही नहीं था। यानी वो जांच जिसे हिलेरी क्लिंटन समेत बहुत लोग ट्रंप की जीत की वजह मानते हैं। यहाँ बहुत सारे विश्लेषक इसे सीधे तौर से ट्रंप कैंपेन और रूस के दरमियान साठगांठ के आरोपों की जांच से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कोमी के नेतृत्व में FBI इस मामले की जांच कर रही थी। ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप के अटॉर्नी जनरल यानी जो न्याय विभाग के प्रमुख हैं, जिन्हें रूस के साथ संपर्क की जानकारी छिपाने का आरोप साबित होने पर खुद को रूस के ट्रंप और ट्रंप कैंपेन से जुड़ी जांच से अलग करना पड़ा था, वही अटॉर्नी जनरल ने उसी अटॉर्नी जनरल ने उस अधिकारी को बर्खास्त करने की सलाह दी है जो इस मामले की जांच कर रहा है। तो इसे एक बड़े राजनीतिक भूचाल का नाम दिया जा रहा है। कुछ विश्लेषक इसे अमेरिकी तारीख का काला दिन कह रहे हैं, तो कुछ इसे निक्सन के वाटरगेट स्कैंडल से जोड़ रहे हैं, जब निक्सन ने उस मामले की जांच कर रहे स्पेशल प्रोसिक्यूटर को बर्खास्त कर दिया था और फिर बाद में उन्हें उसी जांच में दोषी पाया गया और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
ब्रजेश, राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार के लिए हिलेरी क्लिंटन जेम्स कोमी को जिम्मेदार ठहरा चुकी हैं। इसके बावजूद कई सीनियर डेमोक्रेट नेताओं ने ट्रंप प्रशासन के इस कदम की निंदा की है और इसे बड़ी गलती करार दिया है। क्या मतलब निकाला जाए इसका?
देखिए, डेमोक्रेट्स के लिए इससे बुरी खबर नहीं हो सकती है। फिलहाल अगर हिलेरी जीत गई होती तो आप सही कह रहे हैं, माना जाता है कि यहाँ वो सबसे पहले कोमी को हटाती, क्योंकि चुनाव के 10 दिन पहले कोमी ने दोबारा से जांच शुरू करने का ऐलान किया और फिर 1-2 दिन पहले कह दिया कि उसमें नया कुछ नहीं निकला। और विश्लेषकों का कहना है कि हिलेरी की हार की वो बड़ी वजह बनी, लेकिन अब डेमोक्रेट्स का मानना है कि ट्रंप के खिलाफ जो जांच चल रही है, ट्रंप कैंपेन के खिलाफ जो जांच है उसमें ईमानदारी बढ़ती जाएगी, पारदर्शिता रखी जाएगी, इसकी सबसे बड़ी उम्मीद कुमी ही थे और डेमोक्रेट्स इसे एक बड़े झटके की तरह देख रहे हैं। उनमें से कईयों का कहना है कि अब जो भी नया डायरेक्टर होगा वो उसे ट्रंप नियुक्त करेंगे। तो कुछ रिपब्लिकन्स भी ये बात कह रहे हैं कि एक स्वतंत्र डायरेक्टर होना चाहिए, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि वो ट्रंप के उम्मीदवार को अपनी मंजूरी देते हैं या नहीं। बहरहाल डेमोक्रेट्स अब रूस के साथ जो संबंधों की जांच चल रही है उसके लिए एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर की मांग कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी उन्हें रिपब्लिकन सेनेटरों की मदद की जरूरत पड़ेगी और वो अपने आप में एक बड़ा मौका होगा। आप कह सकते हैं कि अगर कुछ रिपब्लिकन सेनेटर्स सभी डेमोक्रेट सेनेटर्स के साथ जुड़ के कहें कि इस मामले की एक अलग स्पेशल स्वतंत्र प्रोसिक्यूटर की तरफ से जांच करवाने की जरूरत है, लेकिन यह आप ये कह सकते हैं कि बहुत बड़े राजनीतिक उथल पुथल देखा जा रहा है इस वक्त अमेरिका में।
बहुत बड़ा राजनीतिक उथल पुथल अमेरिका में देखा जा रहा है। जानकारी दे रहे थे वॉशिंगटन से हमारे संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब आगे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में पद से हटाई गई पूर्व राष्ट्रपति पार्क गुन-हे के बाद दक्षिण कोरिया को नया राष्ट्रपति मिल गया है। समय से पूर्व कराए गए चुनाव में उदारवादी मानवाधिकार वकील मून जे इन ने चुनाव में जीत हासिल की है। अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने वादा किया कि वो देश में न्याय का शासन लाएंगे और दक्षिण कोरिया के सभी लोगों के लिए काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर कोरिया के साथ सहयोग और बातचीत के जरिए वो संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करेंगे। ब्यौरा सुनिए हरिता कांडपाल से।
मानवाधिकार मामलों के वकील रहे मून जे इन को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया है। ये जश्न मून जे इन के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने को लेकर हो रहा है। कल हुए राष्ट्रपति चुनाव में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार मून जे इन के खाते में 41% वोट गए, जबकि दूसरे नंबर पर रहे लिबर्टी कोरिया पार्टी के होंग जुन प्यो जिनके खाते में 24% वोट गए। तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी के आन चल सू रहे। कल चुनावी नतीजे सामने आने के बाद मून जे इन ने अपने समर्थकों से ये कहा, कल से मैं सबका राष्ट्रपति बनूंगा। मैं एक ऐसा राष्ट्रपति बनूंगा जो सबके लिए काम करेगा, उनके लिए भी जो मेरा समर्थन नहीं करते। मून जे इन के शब्द। मून जे इन के राष्ट्रपति बनने पर उत्तर कोरिया को लेकर दक्षिण कोरिया के रुख में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है, क्योंकि मून जे इन उत्तर कोरिया के साथ बातचीत के हिमायती हैं। ये इससे पहले की राष्ट्रपति रही पार्क गुन-हे की नीति के बिल्कुल उलट है, क्योंकि उन्होंने उत्तर कोरिया से सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। पार्क गुन-हे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें महाभियोग के जरिए हटा दिया गया था। महाभियोग को लेकर महीनों चली खलबली के बाद दक्षिण कोरिया में समय से पहले राष्ट्रपति के चुनाव कराए गए हैं। लोग अब राहत महसूस कर रहे हैं। सियोल की एक मतदाता मून जे इन की जीत पर खुशी जाहिर कर रही हैं। क्वाक की योन ने कहा, मैं उत्साहित हूँ। मैंने कभी सपने या उम्मीद के बारे में नहीं सोचा था। मुझे ये बेकार लग रहे थे, लेकिन इन मुश्किलों में मून जे इन ने जो किया उससे मुझे उम्मीद की किरण नजर आती है। उत्तर कोरिया के शरणार्थी परिवार से आने वाले मून जे इन दक्षिण कोरिया की राजनीति में एक बड़ी शख्सियत रहे हैं। वो अपनी पूर्ववर्ती पार्क गुन-हे के पिता का विरोध करने की वजह से जेल में भी दिन बिता चुके हैं। अब भ्रष्टाचार के आरोप में पार्क गुन-हे जेल में बंद है, जबकि एक शरणार्थी के बेटे मून दक्षिण कोरिया के सत्ता के शिखर तक पहुँच गए हैं।
ब्यौरा सुना रही थी हरिता कांडपाल। मून जे इन की शख्सियत को और अच्छी तरह समझने के लिए मैंने बात की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कोरियन स्टडीज के प्रोफेसर संदीप मिश्रा से और पूछा कि मून जे इन का राजनीतिक सफर कैसा रहा है।
मून जे इन की राजनीति शुरू होती है जब नोमू हेन का कार्यकाल खत्म होता है 2007 में। उसके बाद वो लोकतांत्रिक पार्टी के एक प्रमुख नेता के रूप में उभर के आते हैं और वहां से वो लगातार एक एक सीढ़ियां चढ़ते हुए 2012 में जो मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में पाकन है, जो राष्ट्रपति चुनी गई थी, जिनका अभी महाभियोग से जिनको हटा दिया गया, उनके खिलाफ वो खड़े हुए थे और केवल 3% मतों से वो हारे थे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक पार्टी के जो प्रोग्रेसिव पार्टी है उसके नेता के रूप में इनकी इमेज रही है। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात रही है कि कुल मिला के इनके में जो सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जाता है, ये बड़े मिच्योर और सबको साथ लेके चलने की इनकी पर्सनालिटी है। आज जब वो चुनाव जीतने का लगभग तय हो चुका था, आज रात को जब अपना जनता के नाम संबोधन कर रहे थे, तब भी उन्होंने इस बात को दोहराया कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं जिन लोगों ने मुझे समर्थन नहीं दिया है मैं उनका भी प्रतिनिधित्व करूं और देश को चलाने में, एक अच्छे कोरिया के निर्माण में अगर हो सकेगा तो मैं विपक्षी दल के लोगों को भी अपने साथ लेके चलूंगा और उनके योग्यता के अनुसार अपने सरकार में शामिल करने की कोशिश करूंगा।
संदीप, उत्तर कोरिया के साथ पिछले लंबे अरसे से संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, दक्षिण कोरिया की तनाव का माहौल है, ऐसे में ये बातचीत के हामी रहे हैं, कितना आगे बढ़ पाएंगे, कितने संबंधों को मधुर बना पाएंगे?
मुझे लगता है कि मुझे इनका जीतना साउथ और नॉर्थ कोरिया के संबंधों में सुधार के बारे में एक अच्छे संदेश की तरह है। ये इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2002 से 2007 तक ये नोमू हन के प्रधान सचिव के रूप में काम किए थे और नोमू हन के समय में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में दूसरी जो है वो वहाँ के नेताओं की, जो किम जोंग इल और नोमू हन की एक मीटिंग हुई थी और दोनों कोरिया के बीच काफी जो है संबंध सुधरे थे, तो वो अनुभव इनके पास है। इसके अलावा, अनुभव के अलावा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है कि ये नॉर्थ कोरिया के किस नेटवर्क को इस्तेमाल करना है, किस तरह वहाँ के पार्टी एलिट या मिलिट्री एलिट से बात करनी है, कौन वहाँ पे महत्वपूर्ण लोग हैं जो निर्णय लेते हैं, उस विषय में वो मुझे लगता है कि साउथ कोरिया के अन्य नेताओं के मुकाबले मुझे इन ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। तो मुझे लगता है कि उन सब सारी चीजों को वो फिर से एक बार वो रिवाइज करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन चैनल्स को फिर से एक्टिवेट किया जाए। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने के बाद से अमेरिका की नीति साउथ कोरिया पे दबाव बनाने की है, मुझे लगता है कि मुझे इन उससे थोड़े से असहमत से दिखते हैं। जिस तरह से टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम, थाट सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने एक तरह से बहुत ही जल्दी जल्दी करके इम्पोज किया है साउथ कोरिया पे, मुझे लगता है कि मुझे इन उस पर भी फिर से विचार करेंगे। इसके अलावा जो थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे दिखता है कि वो अमेरिका और चाइना दोनों के साथ एक साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करते नजर आएंगे, क्योंकि इनका मानना है कि ये दोनों देश हमारे सुरक्षा से लेके हमारे आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण पार्टनर हैं और उसमें से किसी एक को भी छोड़ा नहीं जा सकता है। तो ये जो सबको साथ लेके चलने की आदत है, या उत्तर कोरिया के बारे में उनका ये विश्वास कि हम इंगेजमेंट से बातचीत करके कोई समाधान निकाल सकते हैं, ये जो दो मुख्य इम्पोर्टेंट इनकी जो पर्सनैलिटी में और जो इनके पॉलिटिकल कंडक्ट में जो पीछे बातें रही हैं, इसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि नॉर्थ कोरिया के साथ कुछ रास्ते निकाल पाएंगे। हालांकि अब ये समय ही बताएगा कि किस तरह से चीजें आगे आगे बढ़ती हैं।
दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति मून जे इन की शख्सियत के बारे में बता रहे थे जेएनयू में प्रोफेसर संदीप मिश्रा।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 6155, 7995, 9915 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में फांसी की सजा सुनाए जाने के मामले में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। वो अभी भी पाकिस्तान की जेल में बंद हैं, लेकिन कल देर रात ऐसी खबरें आईं कि हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है और कहा है कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को फांसी देने से पहले उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरा मौका दे। इस खबर पर भारतीय मीडिया में जमकर ये खबर छपी और लेकिन पाकिस्तान की मीडिया ने कुछ और ही बातें छापी और कुछ अलग तरीके से इस खबर को पर अपनी दृष्टि दौड़ाई। हमारे साथ स्टूडियो में हरिता कांडपाल मौजूद हैं। हरिता, ये बताइए कि दोनों देशों की मीडिया में इस खबर को कैसी कवरेज दी गई है?
जी बिल्कुल, भारत में तो ये सारे ही अखबारों में के पहले पन्ने पर छाई हुई है, लेकिन कल रात से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मीडिया में इस पर ना के बराबर चर्चा रही और बहुत ही कम अखबारों ने और बहुत ही कम लोगों ने इसकी चर्चा की। भारत के अखबारों की पहले बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा बताया कि भारत की अपील पर हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान की सरकार से कहा है कि कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा को फिलहाल रोक दें। और इस पर द हिंदू ने पूरा ब्यौरा दिया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रेसिडेंट जो हैं रॉन अब्राहम, उनके हवाले से कहा गया है कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को निर्देश दिया है कि वो भारत की अपील जो की गई है कुलभूषण जाधव की फांसी को लेकर उस पर गौर करें, और जब तक न्यायालय मामले की सुनवाई नहीं कर लेता और कोई इस पर आदेश नहीं आ जाता तब तक कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाए। और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इस पर जानकारी दी है और बताया कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया है कल रात, उन्होंने देर रात ट्वीट किया, कहा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अदालत के प्रमुख के निर्देश की जानकारी कुलभूषण जाधव की माँ को दे दी है। कुलभूषण जाधव की माँ ने भी पिछले दिनों उनसे मिलने के लिए जो है गुहार लगाई थी, उन्होंने वहाँ पे अर्जी दी थी, अपील की थी।
भारत के मीडिया में तो एक खबर छाई हुई है,
और पाकिस्तान के अखबारों की बात करें तो बड़े बड़े अखबारों में तो इसकी कोई चर्चा मैंने देखी नहीं, डॉन में नहीं है और कई अखबारों में नहीं की है, लेकिन डेली पाकिस्तान ने लिखा है कि भारत और भारतीय मीडिया दावा तो कर रहे हैं कि फांसी पर रोक लगाने का आदेश दिया गया, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, पाकिस्तान से नहीं आया कोई ऐसा स्पष्टीकरण, इस पर कुछ नहीं कहा गया है। और वरिष्ठ पत्रकार जावेद राणा के हवाले से अखबार लिखता है कि भारत और पाकिस्तान द्विपक्षीय समझौते में है और ये कानून का अंदरूनी मामला है पाकिस्तान का, इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय अदालत का जो न्यायाधिकार है, नया क्षेत्र है, वो पाकिस्तान नहीं भी स्वीकार कर सकता है, हो सकता है कि, लेकिन ये जरूर है कि द्विपक्षीय मामला होने के नाते पाकिस्तान पर एक दबाव जरूर बनेगा कि उसे कम से कम कुलभूषण जाधव की फांसी को जो है वो टालना पड़ सकता है। एक और अखबार है पाकिस्तान ने जिसने इसकी चर्चा की, ट्रिब्यून अखबार ने लिखा है कि भारत ने सिर्फ अपील की है लेकिन भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि अदालत ने फांसी रोकने का आदेश नवाज शरीफ को सुना दिया है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, अखबार का ऐसा कहना है।
आज थोड़े समय के बाद इस खबर में क्या है, कितनी सच्चाई है,
हो सकता है कि आज पाकिस्तान से हम कोई इस पर पुष्टि सुने या इस पर कोई प्रतिक्रिया सुने
या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की तरफ से कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी हो,
प्रेस के विज्ञप्ति आए और इस पर ज्यादा स्पष्टीकरण हमारे सामने आए।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरिता इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली विधानसभा के कल बुलाए गए विशेष सत्र में आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने एक डेमो के जरिए ये दावा किया कि ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ संभव है। चुनाव आयोग ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि उनकी मशीनें तकनीकी रूप से सक्षम होती हैं। वहीं विपक्षी दलों ने दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद पर लगे आरोपों से ध्यान हटाने के लिए दूसरे मुद्दे उठा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की भी राय है कि ईवीएम के डेमो जैसे तरीकों से आम आदमी पार्टी को फायदा नहीं मिलेगा। एक रिपोर्ट के साथ वात्सल्य राय।
टोटल वोट 19, पहले कैंडिडेट को 2, दूसरे को 2, तीसरे को 11, मुबारक हो सिरसा जी, चौथे को 2, पांचवे को 2।
दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में कल आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने ईवीएम का डेमो टेस्ट देकर दावा किया कि मशीन में छेड़छाड़ संभव है। सत्र के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि ऐसा सिर्फ कुछ सेकंड में किया जा सकता है।
हम तो कह रहे हैं आप अपनी ईवीएम दे दीजिए, उसका मदरबोर्ड चेंज करना है 90 सेकंड लगते हैं, वो अपनी ईवीएम देंगे उसका मदरबोर्ड चेंज करके दिखा देंगे।
आम आदमी पार्टी ईवीएम के डेमो को लेकर एक दिन पहले से ही माहौल बनाने में लगी थी। केजरीवाल ने कल सुबह ट्वीट किया था कि देश में चल रहे एक बहुत बड़े षड्यंत्र का सच आज सदन में सौरभ भारद्वाज देश के सामने रखेंगे, उन्हें जरूर सुनिएगा। लेकिन ईवीएम से छेड़छाड़ के तमाम दावों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि उनकी मशीनें तकनीकी रूप से सुरक्षित होती हैं। बाहरी और नकली उपकरणों पर डेमो देकर समझदार नागरिकों का फायदा नहीं उठाया जा सकता। सौरभ भारद्वाज ने जिस मशीन पर डेमो दिया था वो चुनाव में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम नहीं थी। अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले उनके मंत्रिमंडल के पूर्व सहयोगी कपिल मिश्रा ने इसे लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश बताया। ऐसा ही आरोप भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी लगाया।
संगीन जुर्म किया इन्होंने, इसको डाइवर्ट करने के लिए ये लोग उलूल जुलूल बातों में फंस रहे हैं। ये इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करके चाहते हैं कि जनता के बीच से इस मुद्दे को हटाया जाए।
उधर राजनीतिक विश्लेषक भी ईवीएम डेमो को लेकर उत्साहित नहीं दिखे। वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी को ईवीएम से छेड़छाड़ का मुद्दा इस तरह उठाना ही था तो इसका प्रदर्शन चुनाव आयोग की 12 मई को होने वाली मीटिंग में किया जा सकता था।
ये तरीका नहीं है, उसका तरीका एक विशेषज्ञता वाला तरीका है जिसके लिए सीधे इस मशीन को लेकर के सीधे चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए था। हालांकि ये ईवीएम है भी नहीं जो आज उन्होंने जो दिखाई है विधानसभा में।
प्रमोद जोशी ये सवाल भी उठाते हैं कि केजरीवाल अब तक कपिल मिश्रा के लगाए आरोपों पर चुप क्यों हैं। वहीं कपिल मिश्रा ने ऐलान किया हुआ है कि अगर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं की विदेश यात्रा को लेकर जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई तो वो आज से भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। अब देखना अहम होगा कि ईवीएम डेमो के जरिए आरोपों की राजनीति को नया मोड़ देने वाली आम आदमी पार्टी आज किस रणनीति के साथ सामने आती है।
रिपोर्ट सुना रहे थे वात्सल्य राय।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में छात्र मुश्किल हालात के बीच कामयाबी के नए आसमान छू रहे हैं। ये छात्र आईआईटी और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में न सिर्फ हिस्सा ले रहे हैं बल्कि सफलता भी हासिल कर रहे हैं। इन छात्रों की कामयाबी में कोचिंग के जरिए राह आसान बनाने वाले कुछ लोगों का अहम योगदान है। वे छात्रों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। श्रीनगर से सुनिए माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
श्रीनगर के जवाहर नगर की रहने वाली 20 साल की काजी फातिमा ने हाल ही में आईआईटी मेंस का एग्जाम पास किया है, लेकिन फातिमा के लिए ये सफर तय करना इतना आसान नहीं रहा। फातिमा फिलहाल आईआईटी एडवांस की तैयारी कर रही हैं जो इसी महीने के आखिर में होने वाला है। श्रीनगर के इंदिरा नगर में रहने वाली 20 वर्षीय महरीन ने भी पिछले महीने अप्रैल में आईआईटी मेंस का एग्जाम पास किया है और वो भी आईआईटी एडवांस की तैयारी कर रही हैं। फातिमा और महरीन की इस कामयाबी में इन दोनों की मेहनत के अलावा श्रीनगर में मौजूद द राइज नाम की एक कोचिंग सेंटर का बड़ा हाथ है। फातिमा और महरीन की तरह इस साल इस कोचिंग सेंटर के कुल 42 बच्चों ने आईआईटी मेंस की परीक्षा पास की है जिसमें 6 लड़कियां भी शामिल हैं। फातिमा कहती हैं,
खाना जब खराब हुए तो प्रॉब्लम्स तो आई, तो उस टाइम हमारे बोर्ड्स भी आने वाले थे, तो मैंने ज्यादा फोकस किया जो ज्यादा थ्योरेटिकल है,
तो महरीन कहती हैं कि कश्मीर के हालात से मुश्किलें तो होती हैं, लेकिन इसके बावजूद घर में जिस तरह हो सकता है वो तैयारी कर लेती हैं। कोचिंग सेंटर में शिक्षा के अनुभव पर महरीन कहती हैं,
यहाँ पे टेस्ट रेगुलरली होते हैं जिस वजह से फिर एग्जाम में नर्वसनेस उतनी नहीं होती, तो उस तरह से हेल्पफुल है ये इंस्टीट्यूट।
श्रीनगर के राजबाग इलाके में कायम द राइज कोचिंग सेंटर में इस समय करीब 250 छात्र आईआईटी और दूसरी परीक्षा की तैयारी में मसरूफ हैं। श्रीनगर के रहने वाले मुबीन मसूदी ने बिहार के अपने 3 दोस्तों इम्बसात अहमद, सलमान शाहिद और सैफी करीम के साथ मिलकर 2012 में इस तरह के आगाज का फैसला किया था। मुबीन कहते हैं कि कश्मीर में छात्रों को तालीम के लिए सही राह दिखाने की जरूरत है।
स्टूडेंट्स डिस्पाइट बीइंग इंटेलेक्चुअली कैपेबल एंड डिस्पाइट बीइंग मॉनेटरीली वेल ऑफ, उनको उतनी अवेयरनेस नहीं होती है एंड हेंस वो अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं कर पाते, तो वही एक मोटिव था दैट आई क्रिएट अ सपोर्ट सिस्टम हियर।
30 साल के इम्बिसात का कश्मीर में आने जाने और फिर यहाँ पढ़ाने का सफर दिलचस्प रहा है। इम्बिसात कहते हैं,
एक्चुअली जब मैं अपने कॉलेज में था तो हम लोग कुछ समर एक्टिविटीज करते थे। 2012 में मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया था फर्स्ट टाइम, तो हमने पाया कि यहाँ पर अवेयरनेस लेवल बिल्कुल ही कम है। बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं लेकिन वो एंड अप नहीं कर पा रहे हैं उन जगहों पर जहां वो एक्चुअली जाना डिजर्व करते हैं, तो इसको हमने एज अ प्रॉब्लम सेलेक्ट किया।
पिछले साल यानी 2016 में भी इस कोचिंग सेंटर से 4 छात्रों ने आईआईटी क्लियर किया था, जबकि 30 से ज्यादा छात्रों ने एनआईटी में दाखिला लेने में कामयाबी पाई थी। इसके अलावा राइज के एक और छात्र 19 साल के शेख मोजिन ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। मोजिन को अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग विभाग से एडमिशन का ऑफर मिला है। वो जल्द ही एडमिशन के लिए अमेरिका जाने वाले हैं। कोचिंग सेंटर का दावा है कि शेख मोजिन गाठी के पहले ऐसे छात्र हैं जिन्हें प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से दाखिले का ऑफर मिला है। माजिद जहांगीर, बीबीसी श्रीनगर।
थोड़ी चर्चा खेलों की। आईपीएल के 49वें मैच में किंग्स इलेवन पंजाब ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 14 रन से हरा दिया है। किंग्स इलेवन पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने जीत के लिए 168 रन का लक्ष्य रखा, लेकिन कोलकाता की टीम निर्धारित 20 ओवर में 153 रन ही बना सकी। और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय जांच एजेंसी एफबीआई के प्रमुख जेम्स कोमी को पद से हटाया। जेम्स कोमी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कथित रूसी हस्तक्षेप और ट्रंप के चुनाव प्रचार के रूस के साथ संबंध की जांच की अगुवाई कर रहे थे। दक्षिण कोरिया में मून जे इन आज लेंगे राष्ट्रपति पद की शपथ। अमरीका सीरिया में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से लड़ रहे विद्रोहियों के गठबंधन को हथियार देगा। कुर्द वाईपीजी संगठन इस गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार, भारत की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया शाकिर आलम ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति और देश दुनिया की तमाम खबरें, उनका अपडेट, विश्लेषण पढ़ने के लिए जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। नमस्कार।